दो दिन पहले सुनने को आया कि हमें मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है।
टू फास्ट टू मच हैज हैपेंड।
ये तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, सच्ची बताओ तो कि मैं यहां हूं।
वो एक्साइटमेंट अंदर रखना है ना, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए।
पहले तुमको देख के ऐसा लगा कि हमारे जो ड्रीम थे वो रियलिटी में बदल गए।
आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी।
ही इज अ ग्लोबल लीडर, गेटिंग टू मीट हिम इज
बट दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं। That was like my bitch का हो जाने वाले moment था।
स्वागत है आप सबका।
Once he came and sat in front of us, I'm sure सब लोग wonder कर रहे थे, wait, is the same person जो हम TV पे देखते हैं।
जब सामने बैठे थे तभी भी धक धक हो रहा था बहुत।
आप लोग एक दूसरे को कभी मिलते हैं या पहली बार मिले?
नहीं मिलते हैं हम लोग।
मतलब आप लोगों का पुराना कारोबार है। तो जब आपको इस सूचना मिली होगी तो क्या लगा?
इस मोमेंट तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये कुछ होने जा रहा है ऐसा।
इतनी पहले मिलेंगे फिर ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि मालूम नहीं कैसे कब।
हाँ ऐसे आजकल तो फेक के दिन
हैं। सर अभी भी नहीं लग रहा है कि आप सामने
हैं। अच्छा होने दीजिए।
मेरे को यकीन नहीं हुआ पहली बात क्योंकि आपने बुलाया। तो सर एक बार लगा कि वो आपसे ये बात करने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली हम लोग फ्रंट फुट में आ जाएंगे और हमारा जो सबका एक गोल है ना वो आज वैलिडेट हो गया सर, वो गेमिंग की जीत हो गई सर। आप बुलाए वो आज इंडस्ट्री जीत गई।
जो थोड़े दिन पहले नेशनल थिएटर अवार्ड हुआ था, इवन उस टाइम को भी हमें यही लगा था कि फाइनली इतने सालों के बाद ऐसे लग रहा है कि क्रिएटर्स गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारे क्रिएटिविटी। जो हम यूट्यूब पे करते थे हमें लगता था कि हाँ हमारे लोग देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, यही हो रहा है। बट
आप लोगों ने उस क्रिएटिविटी वाले अवार्ड में भी अप्लाई किया था?
मैं तो गया था सर, हम तो बिल्कुल आपके इतने दूर बैठे थे सर, भी यकीन नहीं
करता। आप परिचय वरिचय बता दीजिए।
नमस्कार सर, मेरा नाम अनिमेश अग्रवाल है, मैं 28 साल का हूँ, मैं गुवाहाटी ऐसा हूँ। मैं बहुत ही यंग एज में पढ़ाई कर रहा था जब मैं सी ए का।
कोई यंग एज में पढ़ाई करता हूँ
जी सर, वही मतलब कंपेयर टू के अभी भी 28 साल का ही मैं खुद को यंग ही मानता हूँ, मैं और यंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं सी ए का पढ़ाई कर रहा था, मैं सी ए फाइनल्स तक पहुँचा था और मैं सी एफ ए और एफ आर एम की भी लेवल 1 दे चुका था। मैंने अपने माता पिता से एक साल का ब्रेक मांगा था अपने पढ़ाई से गेमिंग के करियर को परस्यू करने के लिए। जब मैं 2018 में स्टार्ट किया, मैं सोच के पूछा था कि एक साल में गेमिंग में पूरा दूंगा और कुछ बनने की कोशिश करूंगा।
तो परिवार में क्या है?
अब सर क्योंकि मैंने पढ़ाई करके रखी थी, मेरे पास बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग था कि गेमिंग में मैं कुछ नहीं कर पाता, वापस जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता। तो उसने माता पिता हमेशा सपोर्ट किए इस चीज़ को। और सर मेरा गोल यही है कि मैं गेमिंग को इंडिया में आगे बढ़ाऊँ और सबको जो भी युवा फॉलो कर रहे हैं हम सभी को, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, उनको करेक्ट डायरेक्शन दिखाऊँ गेमिंग से अच्छा क्या कर सकते हैं और उसी की तरफ काम आगे करने की कोशिश चल रही है। सर
मुसीबत ये हो जाएगी कि जब भी आपको ठग बोलेगा किसी को भी आप दिखाई देंगे और कोई आपको देखेगा तो कहेंगे यार ये तो अच्छे इंसान है, उसको ठग कैसे मिला?
सर वो चीज़ लेकिन एक भी बच्चे की गेमिंग में थोड़ा नाम बना लिया तो गेमिंग वाले लोग अब ठग से अच्छे नज़र से मुझे देख रहे हैं।
अक्सर ठग पे देखे
हाँ, और मैं दुनिया एकदम भी ठगी नहीं कर रहा हूँ सर।
मेरा नाम अंशु बिष्ट है, वैसे मेरा गेमिंग नाम गेमर फ्लीट है सर। मैं आता हूँ हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से। तो मैं सर वैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा एक प्राइवेट स्कूल में 30 साल तक उनने बस कंडक्टरी करी थी ताकि मैं और मेरी दीदी को वो स्कूल में पढ़ा सकें। मैंने थोड़े ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट करे बच्चों को, एक दो जॉब्स ले ली, फिर अपना खुद का कंप्यूटर बनाया। एक सर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तो उनका बनता है कि ऐसे सोचना कि आप समझ लो ना कि आपका बच्चा बस कंप्यूटर में बैठ के चिल्ला रहा है दिन भर, क्योंकि सर थोड़ा होता है कि मतलब चिल्लाना इन द सेंस कि मतलब खुश होना कि तभी लोग देखते तो खुश होते हैं ना कि अरे वाह इसको कितना मज़ा आ रहा है, तो उन्हें मज़ा आता है।
यानी आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है
थोड़ी बहुत
ताकि व्यूअर्स भी बढ़े?
तो हाँ सर करनी तो पड़ती है सर।
सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है आपको दुनिया में?
सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सर की मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो इंडिया सर, जैसे आपका है कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, आप देश को एक स्तर पे ले जाना चाहते हो बहुत, तो वैसे ही मेरा भी था कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि दुनिया बाय बाय करे।
मेरा नाम नमन माथुर है और लोग मुझे मॉटल के नाम से जानते हैं। मैं पला बड़ा मुंबई में हूँ, नवी मुंबई में, और जब मैं 4 साल का था मेरे पापा गुजर गए थे। मम्मी ने मुझे और मेरे बड़े भाई को रेस किया, उन्होंने टिफ़िन सर्विस किया, सब कुछ किया, और 2015 में मोबाइल आ गया था हाथ में, तब तो शुरू किया था खेलना।
पहले तो स्कूल कॉलेज में दोस्तों से बातें करते थे, तब पता चला
मैं गेमिंग में को खुद से वो यूट्यूब देख के आया था, मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो।
मैं बीमार हूँ
बस 2015 से लेकर 18 तक जब तक मेरा बी कॉम पूरा कम्प्लीट हुआ उतने में मैंने ये फिगर आउट किया कि ये जितने भी फॉरेन यूट्यूबर हैं हम जिन्हें देख रहे हैं इनके कमेंट सेक्शन में सारे इंडियन,
यानी ये सब जो दुनिया भर के अच्छे अच्छे खिलाड़ी सारे कमेंट करने वाले इंडियन,
मेजॉरिटी में को जो दिखते थे इंडियन ही दिखते थे, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं उनसे इंस्पिरेशन लेके और अपलोड करूं, और मैंने वो वीडियो 2018 में अपलोड किया और वो इंस्टेंटली वही वीडियो जो सोच से बना था वायरल हो। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, निवेश से मिला 2018 में, मैं हम लोगों ने कंपनी भी शुरू की अपनी।
इमॉर्टल नाम कैसे रखते हैं भारत में, तो लोग इमॉर्टल की बात करते हैं,
लोग सब जगह मैं देख रहा हूँ इमॉर्टल नाम रख रहे हैं, तो मैंने बस
अच्छा कुछ नया कर दिया,
इमॉर्टल कर दिया उसको।
मेरा नाम पायल धारे है, सब लोग पायल गेमिंग के नाम से जानते हैं। मैंने इन सब के बाद स्टार्ट किया है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया की लीडिंग फीमेल क्रिएटर बनूंगी। मैं बहुत ही छोटे गांव से हूँ, मैं एमपी में एक छिंदवाड़ा नाम की जगह है इंदौर के पास में है, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट था बट घर पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, 12th तक भी हमारे पास घर पर फोन नहीं था खुद का, तो गेमिंग में थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखते रहते थे, या दोस्त के जो भाई वगैरह वो कैफे जाते थे गेम खेलने, तो वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि गेमिंग भी कुछ होता है। तभी के टाइम पे यूट्यूब पे गेमिंग पॉपुलर होने लगी थी इंडिया में भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको एक ट्राई दूँ, और लड़कियों को भी एक ऐसा ऑप्शन मिले कि इसमें आप करियर बना सकते हो।
लड़कियों का इसमें हमें कितना संभावना बढ़ती है,
फिर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें, एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए कि बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। एंड जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया, सब थोड़ा घबरा रही हूँ।
आप थोड़ी छाँक लीजिए फिर बात करते हैं।
मेरा नाम मिथिलेश पाटनकर है, मेरा गेमर नेम मिथपैट है। मैंने जो ट्राई किया है कि हमेशा से यूनिक कंटेंट देना है, एंड आई थिंक उसी की वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, तो गेमिंग एंटरटेनमेंट मिमिक्री ये सब ये मैं बनाता हूँ मेरे विलेज
सलाड बना।
मैं चाहता था कि इंडिया से ऐसा कंटेंट मैं बनाऊँ जो बाहर के लोग भी देखें, लोग अप्रिशिएट करें। आज से 2 साल पहले एक स्ट्रीमी अवार्ड होता है, बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड, सो इंटरनेशनल कैटेगरी में आई वॉज द ओनली इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड, एंड लॉस एंजलिस में अवार्ड होता है, सो आई गॉट दैट अवार्ड, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ एक बहुत प्राउड अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए।
नमस्कार सर, मेरा नाम तीर्थ मेहता है, मैं पूछकछ गुजरात से हूँ, और मैं 2014 से हार्स्टोन नाम की एक गेम है उसमें कम्पीट कर रहा हूँ।
तो भुज में ये बीमारी कहाँ से आई?
सर ये तो ऐसा है ना कि हर कोने कोने में फैली हुई है अभी तो।
लोग आपको कच्छ में जानते हैं कि ऐसे कुछ कर रहे हैं आप?
हाँ हाँ अभी तो मतलब बहुत सारे लोग
लेकर के जाना पड़ता है।
नहीं नहीं अभी तो
आप मुझे देखिए मेरे पास तो ये है।
हाँ मतलब इनिशियली तो इसको पता नहीं था, बट जब से ये मेडल हासिल हुआ है तब से काफ़ी मतलब कहें तो सब पहचानने लगे हैं।
हेलो सर, मेरा नाम है गणेश और लोग मेरे को एस के रोसिया से जानते हैं, और मैं बैंगलोर से हूँ, और मैं एक प्रोफेशनल ईस्पोर्ट्स एथलीट हूँ, जो मैं जब से कॉलेज में गया दोस्त लोग ने मेरे को गेम को इंट्रोड्यूस किया, और जब मैं खेला अचानक से उधर जो भी लोग खेलते हैं उन सबसे अच्छा खेलने लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ मेरे को असली में मज़ा आता है करने में, और इस पर मेरे को कुछ बड़ा करना है। मैं जब 17 ईयर ओल्ड था मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया 2017 इंडोनेशिया में, तो जब मेरा सक्सेस मिला और मेरा लाइक टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा माँ बाप का जो ड्रीम था घर बनाने का वो मैं कराया, और दोनों को जॉब से रिटायर कराया, और अभी सब रिलेटिव्स बोलती बस
आई वाज लाइक तब तक हो रहा था पूरा कि क्या बात करूँ उनके सामने, बट आज जब मिला आई जस्ट लाइक जो भी मन में है, जो भी मेरा स्टोरी है, जो मेरे को जानता है, वो सब बोल दिया मैं उनके सामने।
एक साथ आप लोग कितने घंटे खेलते हैं कंटिन्यू?
आई थिंक ई स्पोर्ट्स एथलीट जो होते हैं वो दिन के 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस के देंगे, क्योंकि वो उनकी पूरी रूटीन होती है। वो दिन में उठने का समय, गेम का समय, डाइट, सब कुछ होता है। कंटेंट क्रिएटर्स का सर अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक सब लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 12 घंटे सिर्फ सोच ही रहे, और फिर हो सकता है वीडियो बनाने में वो 2 घंटे ही बनते या फिर वो 10 दिन तक ही बनते।
हमारे देश में क्रिएटिव की दृष्टि से गेम की दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन,
पिछले 2 साल में जो कंटेंट बन रहा है इंडिया में यूट्यूब पे, वो बहुत नेक्स्ट लेवल बन रहा है। लाइक सब ऑफकोर्स लोगों के पास फोन आ गए हैं, सबके पास अब इंटरनेट एक्सेस आ गया, तो हम लोग ऐसा नया नया कंटेंट देख रहे हैं इंडिया में जो आई थिंक वर्ल्ड में किसी ने बनाया नहीं है। मैं शौक हो जाता कि इंडिया में इतना सस्ता, इतना मतलब अच्छा है। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर गेमिंग बात में रखें तो एग्जाम्पल यू पी आई भी तो सिस्टम जो बाहर इतना अच्छा नहीं है, वो सिस्टम नहीं जो इंडिया में, इट्स अ ब्लेसिंग।
गेमिंग की दुनिया में आज करोड़ों बच्चे हैं, उनको ये मालूम है कि हमारे यहाँ इंटरनेट इतना सस्ता है, उसी के कारण उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। पता है,
पता है। मैं तो खुद ही मानता हूँ सर कि
सबसे पहले बोलेगा फ्री इंटरनेट, जो भी बैठा है हम सब,
हमारी शुरुआत ही ऐसे हुई है सर।
जिस तरह से फ्री इंटरनेट, चीपेस्ट इंटरनेट आई थिंक इंडिया के टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज में आते हैं, तो सर आज के दिन भारत में 15,000 गेम डेवलपर्स कहे जाते हैं, 1400-1500 से ज़्यादा गेम स्टूडियोज भी हैं सर। वैसे तो भारत में अगर आप देखो जो गेमिंग है, 5 से 6 साल पहले ही बूम होनी शुरू हुई है। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ा, और 2019
मेरे आने के बाद
जी।
एक ऐसी घटना बताइए किसी के साथ आपको गेमिंग के दरमियान कुछ हो रहा, आपने कहा वर्क स्पार्क कर गया, ऐसा कुछ याद आता है?
मेरे तो लाइव चैट में आया था एक लड़का, बोला था कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैंने बोला था कोई बात नहीं तेरा भाई तेरे साथ है।
देखिए मान लीजिए कि मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है ये गेमिंग की दुनिया क्या है, परसेप्शन का ही मुझे पता है कि बच्चे टाइम खराब करते हैं, पानी दिन भर उसी में बैठा रहता है। और याद है मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था, तो मैंने ऐसे कहा कि ये बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो पबजी वाला लगता है,
पबजी वाला है
वो तो मूवमेंट कर रहा है। जब आपने ये पबजी वाला है बोला था, तो मैं उस समय पबजी में कहीं रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को, और मेरे रिलेटिव्स तब मेरे को ऐसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे थे कि ये नमन को बोला था क्या जी, तब मैं इतने उस रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो सबको पता था, तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला, ये डाउट आ गया सबको।
ये एक ऐसा क्षेत्र है कि अननोन है, ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप ये थे कि तुम बंद करो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो।
ये तो सर अगर
पेरेंट्स बनते हमें पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करे, सिर्फ आपके वीडियोस देखते रहते हैं।
अच्छा फिर वो काम भी आप ही को कहते हैं?
बहुत बार न्यूज़ में देखता है कि पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड यूज करके बच्चों ने गेम्स में इतने पैसे होते हैं वो लिए हैं, वो चीज़ बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। उससे क्या होता है कि फिर हमें भी अफेक्ट हो जाता है।
राइट नाउ मेरा एक ही गोल है कि अगर किसी बच्चे को भी स्पोर्ट्स एथलीट बनना है या बहुत स्किल लेवल पे टॉप लेवल पे खेलना है, उनको मैं कैसे गाइड करूँ, उनका पेरेंट्स को मैं कैसे गाइड करूँ, बिकॉज ये अवेयरनेस बहुत कम लोग के पास
है। घर में ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी जरूरी है, या डांसिंग सीखना माँ बाप चाहते हैं बच्चे को आना चाहिए, वो भी एक व्यक्तित्व के विकास का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसी चीज़ों को प्रतिष्ठा मिलने में सदियों की एक पुरुषार्थ रहा है।
अगर देखा जाए हमारा देश स्पोर्ट्स में हमेशा बहुत आगे था, आज के दिन भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है, पर अगर 1983 वाली वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो मे बी सब लोग उस उतना क्रिकेट में नहीं जाते, और अगर मे बी देश में एक सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम नहीं आते तो सब लोग वो बनना नहीं चाहते। सर गेमिंग 5-6 साल पहले ही शुरू हुआ और आज काफ़ी लोग हैं इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में हमारे जैसे गेमर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करके नाम कमाया। तो सर आई थिंक आज कोई गेमिंग के लिए अगर ये पूछे कि ये क्यों करना है, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि इसको आप साइड हसल रखें।
जो लोग सोचते हैं अनऑर्थोडॉक्स है, बेकार चीज़ है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना, उसको करके आप प्राइम मिनिस्टर, अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर सर के रेजिडेंस में, तो वहाँ तक जाके उनसे बैठ के एक राउंड टेबल में बैठ के उनसे बातें कर सकते हो, तो वो बहुत अनरियल था। और फॉर श्योर लोग अब गेमिंग को एक अलग नज़रिए से देखें कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है।
एज अ गेमर मैं कहूँगा कि ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो पीएम सर ने मेंशन की कि डाउन द लाइन ग्रो करना है एक इंडस्ट्री को, तो उसमें एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है।
उनका वही पेरेंटल एडवाइस, पेरेंट्स की सपोर्ट करना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
आपकी दृष्टि से मुझे बताने जैसी कोई चीज़ आपको लगती है यार, आपको कुछ मन में प्रश्न है तो आप
क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है?
रेगुलेट शब्द ठीक नहीं होगा, वरना सरकार का स्वभाव होता है हर चीज में हाथ डालना। सरकार का मूल नेचर है। अब दो चीज़ें, या तो आप उनको दबाने की कोशिश करो, या तो कानून अनुसार बंधन लगा कर उनको न करो। दूसरा है कि आप चीज़ को समझो, समझ करके हमारे देश के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मॉडिफाई करो, उसको कुछ कानून नियम व्यवस्था के अंदर ढांचा बना, उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ा। अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो फिर बुरा करने वालों को बहुत देर है। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए, और ना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये तो यहाँ क्यों गया, वहाँ क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए।
सर आई थिंक एक चीज़ जो डेफिनेटली करा जा सकता है ईज ऑफ बिजनेस के लिए, सर ई स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ई स्पोर्ट्स को बहुत टेक्निकली जैसे स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई हुआ है, एक अलग से आइडेंटिफाई हो जाए कि स्किल बेस्ड गेमिंग है, इसमें कोई पैसों का गेम में पैसे लगा के पैसे जीतने वाला खेल नहीं है। सर अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती है और सबको पता चल जाता है ये अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑल बॉडीज जिनके हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करना पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। रेगुलेटरी बॉडी जैसा कि आपने कहा कि बंदिश वाली अभी इंडस्ट्री बनी नहीं है क्योंकि अभी बढ़ रही है, तो खुले में बढ़ने देंगे पर साथ में अगर कुछ मिलेगा तो कुछ साल बाद आई थिंक इंडस्ट्री रेडी रहेगी कि सरकार आके उसमें
नहीं, इसको कोई बंदिश की जरूरत नहीं, खुले में ही जाना चाहिए तभी जाकर के ये फले फूले। अगर बंदिश आएगी तो नहीं। क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने कितना पैसे है?
मतलब वो ऐसा समझते हैं कि हम जो
फर्स्ट टाइम मांगते हैं, फर्स्ट टाइम
जैसे हम मतलब गेम्स खेलते हैं वो काफ़ी अलग रहती है, बट वैसे समझते अच्छा ये तो हम जैसे लूडो खेलते हैं वैसे कोई गेम हो गई, बट वैसा नहीं है। वो हम कह सकते हैं कि चेस जैसी एक कॉम्प्लेक्स गेम हम मोस्टली खेलते हैं, इसमें बहुत सी मेंटल स्किल्स भी चाहिए रहती है, फिजिकल स्किल भी चाहिए रहती है।
सर आरएनजी और स्किल बेस्ड गेम को बहुत हाई टाइम के डिफरेंशिएट करें। सर आज भारत के एथलीट्स आके ओलंपिक्स में प्रपोजे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रपोजे।
आप लोग एक काम कीजिए, ये जो क्या समस्या है आपकी मुझे कभी मेल कर दीजिए मेरे ऑफिस में, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं
इधर। लाइक पेरेंट्स को जब उनके बच्चे लोग बोलते हैं कि गेमर बनना है, पेरेंट्स लोग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल गेमर क्या होता है, क्या करता है गेमिंग, मतलब गेमिंग बैक गैम्बलिंग भी समझ जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मोदी जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया कि गेमिंग अलग होता है, गैम्बलिंग भी अलग होता है, और हमने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया।
अब इतने सारी मात्रा में बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको अब रोक नहीं सकते, तो उनको आप सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो सही रास्ते पर ले जाना है तो आपको लगता है डूज एंड डोंट्स, पढ़ाई करो ये तो ठीक है, बैठ गई तो पढ़ाई करो, और क्या क्या बातें आप सोचते हैं कि जिसको कैर करना चाहिए?
बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि यही करें, तो हम लोग सर मैं तो हमेशा अपनी स्ट्रीम पे क्लियर बोलता हूँ, कोई भी आके बोले कि भैया मुझे भी आपके जैसा बनना है, तो मैं तो साफ बोलता हूँ भाई अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जैसे मैं चला वैसे चला। मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के साथ किया, मैंने जॉब करी, मैंने जॉब के साथ किया, जब तक नहीं चला मैंने ऐसा नहीं करा कि सब दुनियादारी छोड़ के मैं बस लगे रहा कि नहीं यही काम करेगा यही काम करेगा।
आज के टाइम पे गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स मतलब उसमें दो कैटेगरी आती है, जैसे ई स्पोर्ट्स में आप कम्पीट करते हो, और कॉन्टेंट क्रिएशन में ऐसा है कि हम गेम के अराउंड वीडियोज बना रहे हैं, उसमें चार दोस्त मिलकर कुछ फन कर रहे हैं, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं लाइव स्ट्रीम में।
जो मैं समझ रहा हूँ आपको बातों से, तीन स्टेज, एक तो है जो गेम खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ी, दूसरे वो लोग हैं जरा क्रिएटिव माइंड के हैं तो उस गेम उसका लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करने के बाद में छोटा सा वीडियो बनाना, इसमें थोड़ा रंग भर देना वो, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि गेम इट्सेल्फ बनाना, कैसी हमारी जो गेम्स हैं जो बनी है अब तक जो आई है उसकी क्या।
तो अभी आई थिंक 2020 में आपने स्टेटमेंट दिया था कि मेकिंग इंडिया की इंडिया के अराउंड गेम्स बनाने प्रमोट कर रहे हैं आप, तो उसके बाद आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है उसमें, जो वो पूरी इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी स्कोप बढ़ा है।
हिंदुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को आकर्षित कर रही है या आप लोगों को लगता है कि ये क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आती है उसमें तो मारो काटो दौड़ो भागो ये ही आती है। जैसे हमारे पंचतंत्र है, क्या कभी किसी ने उसमें माइंड अप्लाई किया?
अभी डेवलपमेंट में जो बोर्ड गेम्स हमारे पुराने खेले जाते थे, जैसे जैसे अष्टो चौकड़ी करके एक गुजराती में छोटे थे तब से वो गेम खेल रहे, तो अभी उसके जो है वो डिजिटल वर्जन अभी रिलीज हो। बाकी यही है कि हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं।
दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट इश्यूज है, दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग मिशन कहा, मैंने कहा मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे मिटिगेट करे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज़्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे हम लोग स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम खेले और हर बच्चा खेले, भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिले।
हम सभी को गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, वैसे आप इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिसकी बात सब सुन के मानते भी हैं। जब आपकी ये बात बाहर आएगी तो मुझे लगता है 100% लोग इस वे में सोचेंगे।
सर यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, वैसे एक कैटेगरी है जैसे शूटिंग गेम्स हो गए, वैसे एक कैटेगरी है गेम स्पोर्ट्स चेंज कर, जिसमें जैसे आपने जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स बताया या फिर ऐसे छोटे छोटे जैसे अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो स्पेसिफिकली वहाँ की पॉवर्टीज कम करने के लिए या वहाँ के कोई जो लोकल इश्यूज है उसको अवेयरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम्स स्पेसिफिकली स्टूडियोज बनाते हैं। तो आई थिंक ऐसे गेम्स इंडियन स्टूडियोज भी कैचअप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि डाउन द लाइन 2-3 साल में तो ऐसे गेम्स आएंगे भी और वो आगे जाके पॉपुलर भी होंगे, जो कहेंगे हम कि सिर्फ इंडिया के भी नहीं बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करेंगे।
मुझे उनकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी है, शायद मैं भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करूँ, अपने ऑडियंस तक भी पहुँचाऊँ, वो ये रहेगा कि आप गेम डेवलपमेंट में घुसो, थोड़े से ऐसे गेम्स डेवलप करो जो हमारे कल्चर या इंडिया कैसे चलता है या हमारा क्लाइमेट या वट एवर ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ एंड उन चीज़ को हम लोग पुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई गेस दिस इज समथिंग दैट आई वुड टेक फ्रॉम हिम।
उन्होंने जो इन्वायरमेंट की ये चीज़ें बताई कि जो गेम डेवलपर्स हैं उनको इन्वायरमेंट पर फोकस करके इंडिया की ऐसी गेम बनाना चाहिए जिसमें इन्वायरमेंट और हमारे जो क्लीननेस है उसके तरफ ध्यान देने के लिए, आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
क्या ओपन सोर्स गेम का होता है कि गेम है उसमें दो चैप्टर किसी और ने जोड़ दिए, दो स्टेप्स किसी और ने जोड़ दिए, क्योंकि आप जो कहते हैं जिसकी उम्र कम होती है,
हाँ,
उसको जो मॉर्टल है उसको इमॉर्टल बनाना है तो फिर हमें ओपन सोर्स करें, उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ने के लिए उसको ओपन करें। तो हो सकता है कि मान लीजिए हमने हनुमान के कैरेक्टर के ऊपर कोई बनाया तो लोगों का भी ओपन सोर्स है, आप हनुमान के नई नई चीज़ें लेके आइए, तो हो सकता है वो।
हाँ सर,
आप देखिए ये हमारे टीवी सीरियल जैसा काम है, हमारे टीवी सीरियल को एंड ही नहीं, उसका नई नई कुछ जोड़ते जाते हैं।
सर हम लोग ने वैसे थोड़ा कुछ आपके लिए सोच के रखा था कि आपसे हम लोग इतना कुछ सीखा है, आपको हम लोग गेमिंग का थोड़ा डिक्शनरी आपको सिखाना चाह रहे थे, तो सर एक गेम है जो अभी पेट आप समझा दो हम क्या करेंगे सर कैसे।
इसमें सर ये हम गेमिंग में कैसे होता है कि हम लोग डांस के अंदर बिजी रहते हैं तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते सर, तो हम लोग ना टर्म यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सके ईजीली।
अरे कि अपने आप देखिए सरकार में जाइए तो सरकारी जो अधिकारी होंगे वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलेंगे,
भारतीय जनता पार्टी
वैसे ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है।
सर सर आपको एक दो वर्ड तो हम लोग बता के जाएंगे, आप हमें फिर बताएगा कि आप कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे।
ऐसा है मेरा एक शब्द है P2G2, तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है प्रो पीपल गुड गवर्नेंस P2G2।
अच्छा एक और है नूब, नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ
बहुत मेहनत करने के बाद।
देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा,
अरे नहीं नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा
ग्राइंड करके एक वर्ड होता है, तो ये तो खैर आप गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राइंड मतलब सर मेहनत करना हो गया बेसिकली। जैसे अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ तो मुझे उसमें एक एक चीज़ सीखने के लिए ग्राइंड करना, तपना, तपना हिंदी में आसान भाषा में तपना।
और दूसरा है चीटिंग और टू, मतलब हम जनरली कोई भी गेम सेशन एंड करते हैं तो दोस्तों को कहते हैं कि अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ जाना है, तो हम टाइप करते हैं जीटिंग
गॉट टू,
चलो निकलिए। मतलब अवे फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि आप गेम खेल रहे हो, चार लोग एक टीम में एक साथ खेल रहे हैं, अचानक से मम्मी ने बुला दिया कि खाना रेडी हो गया, तो वो फ़ोन इधर ऐसे छोड़ के जाएंगे तो मतलब गेम में हार जाएंगे। तो टीम मेंबर्स आके हमें, अगर हम चाहते कि टीम मेंबर्स को समझे कि सुनो मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरी जगह तुम लोग लो, तो हम लोग AFK लिखते हैं, अवे फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब मैं नहीं हूँ पर तुम लोग संभालो।
यानी एक दूसरे को कहकर कह जाते हैं, इतने डिसिप्लिन फॉलो करते हैं।
आपने
किसको किसने बताई? ये मीडिया में सब आता है वो सच मत बांटो।
हाँ
मैं कलर करके बाल वाइट
मुझे
बहुत पहले से रात दे के रखा है नमो,
क्या कहते हैं नमो ओपी
ओवर
पावर, सबसे ज्यादा पार्ट
सर। अभी कुछ आपके साथ गेम्स
चलिए
कपड़े
पहनाता हूँ
हाँ
लूज फुल
मुझे हाथ मूव करना
है
आगे
जोर से मारिए हाँ मारिए। मतलब फर्स्ट गो में जिस हिसाब से उन्होंने किया वी वर माइंड ब्लोन।
ये देखिए राइट नीचे आना ना,
किसी को नहीं मिल सकता उतना मुश्किल है मिलना, जो मौका हमको मिला तो दिस विल बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ वेयर वी प्लेड गेम्स।
आप अंदर चले जाइए यहाँ से, देखिए अब यहाँ पे आ गए आप, स्पीड भी बढ़ चुकी है। अब
मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक इंडियन गेम है, फर्स्ट टाइम मतलब सर्वर खेल रहे
हैं। मैं मार दूँगा,
क्या बात है, बहुत बढ़िया है।
गेम इतनी है कि
नहीं नहीं गेम तो बहुत बड़ा है, उनको मिलेगा एक त्रिशूल मिलता है यहाँ पर, तो वो त्रिशूल लेके फिर उनको आगे बढ़ना होता है। ये देखिए ये त्रिशूल है यहाँ पे, तो जैसे ये इन्होंने ई दबाएंगे तो इनको ये त्रिशूल मिल जाएगा। अब इनको पहला हथियार अपना वेपन मिल चुका है, अब ये लेके वो आगे लॉर्ड विष्णु एंड माँ दुर्गा के गाइडेंस से अपने भाई को बचाएंगे। ये पूरे गेम का शुरुआत और पहलू है। एक एक बात तो है, हम लोग इतने टाइम्स में इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को गेमिंग करने के लिए, आज आपने हमारे जितना इंस्पायर एक दिन में कर दिया।
यानी आप लोगों का कितना समय जाता होगा इसमें देखना।
सर आपको कैसा लगा आज गेमर्स से बात करके?
मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में तो मैं बहुत सोचूंगा इस पर, युवा पीढ़ी का भला भी हूँ
जी,
और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे, मुझे ऐसे मैं चाहता हूँ हमारे लोग इसमें आगे जाएं और हम दुनिया में चीज़ों को लेके जाएं।
सो सर अभी हम लोग संभल गए करके गेम खेल रहे हैं, तो कोड है, रूम कोड है सबका 982981।
ओके जॉइन एवरीवन,
जॉइन ऐसे इस गेम में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आगे आगे जाना होता है, रेस होती है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं।
आपके कैरेक्टर का नाम नमो है।
ये जॉयस्टिक है, हाँ ये सर आपका कैरेक्टर है, और ये जंप बटन है।
मेरा दिमाग खराब हो गया।
अगर आप इसको ऐसे फिंगर रख के ऊपर की तरफ करोगे तो आगे के तरफ मैं आगे
जाऊंगा सर। आप
तो इसको यहाँ पे सर हाथ रखिए और इसको टच स्क्रीन के जैसे ऊपर ऊपर की तरफ।
चलिए सर, चलिए 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 इधर जंप कर रहे हैं। जैसे ही नीचे जाएगा राइट वाला बटन दबाना।
चलो
बहुत मजा आया,
बहुत मजा आया।
भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे।
दो कुछ चीजें लाए थे आपसे साइन कराने के लिए जो हमारे गेम से जुड़े। आप दो मिनट विराजमान हो जाते तो टेबल पे
फॉर श्योर नमो की।
आप लोग ये काम शुरू कीजिए। हर एक को कहिए कि खुद की सिग्नेचर अपनी मातृभाषा में।
लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखें कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है।
ये पहना दीजिए।
अच्छा इसको पहनोगे? शाबाश।
थैंक यू सर, थैंक यू।
सर आपकी संस्कृति कैसे छोटे
चलिए।
I think Indian gaming peaked today. Yeah, who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. हमने उनसे मिले।
मम्मी पापा तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ मिल गया।